আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল করিম ফাউজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা আল বাকরা কি আয়াত 265 হাম পড়েঙ্গে 265। ওয়া মাসালুল লাযিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ইবতিগা'আ মারযাতিল্লাহি ওয়া তাসবীতান মিন আনফুসিহিম কামাসালি জান্নাতিন বিরাবাতিন আসাবাহা ওয়াবিল ফাতাত উকুলাহা যায়ফাইন ফাইন লাম ইউসিবহা ওয়াবিলুন ফাতাল্লুন ওয়াল্লাহু বিমা তাআমালুনা বাসীর। উন লোগোঁ কি মিসাল জো আপনে মাল কো আল্লাহ কি রাহ মে খরচ করতে হ্যায় তো আল্লাহ কি রজা জোই কে লিয়ে করতে হ্যায় ওর ইসলিয়ে করতে হ্যায় কে আপনে দিল কো মুতমাইন করেন, তো উন কি মিসাল এক এসে বাগ কি হ্যায় জো মিট্টি কে টিলে পর হো ওর তো উসকে উপর খুল কর বারিশ হো যায় তো ও দুগুনা ফসল দেতা হ্যায় আর খুল কর বারিশ না ভি হো তো এক ছিড়কা সা ভি কাফি হো যাতা হ্যায় আল্লাহ তালা জো কুছ তুম করতে হো উসকো দেখনে ওয়ালা। পিছলে দরস মে ইয়াদ হোগা কি হামনে এক দূসরি মিসাল পড়ি থি, ও মিসাল ইয়ে থি কি জো লোগ আজিয়ত কে লিয়ে আর রিয়াকারি কে লিয়ে লোগোঁ কি খিদমত লেনে কে লিয়ে আল্লাহ কি রাহ মে খরচ করতে হ্যায় রিয়াকারি করতে হ্যায় তো উনকি মিসাল এক এসি চটান কি হ্যায় জিসকে উপর হালকি সি মিট্টি পড়ি হো আর ফির জেসে হি উসকে উপর তেজ বারিশ হো তো খালি চটান রহ যায়েগি মিট্টি সারি বহ যায়েগি আর ও কোই চিজ ভি সম্ভাল নাই পায়েঙ্গে কি আব ক্যা করেন। তো দোনো কা মুওয়াজনা করনা চাহিয়ে, ওহাঁ সফবান থি চটিয়াল চটান থি পত্থর কি আর ইহাঁ মিট্টি কা টিলা হ্যাঁ, তেজ বারিশ হুই তো চটান সাফ হো গই, ইহাঁ বারিশ হুই তো উস টিলে কে উপর উস টিলে পর জো মৌজুদ বাগ থা উসকে অন্দর আচ্ছি ফসল হুই দুগুনা ফল আয়া আর ফরমায়া কি আগর দুগুনা ফল না ভি আয়ে খুল কে বারিশ না ভি হো তো বস হলকি ফুলকি বারিশ ভি ফায়দা দে জাতি হ্যায়। ইসকা মতলব ইয়ে হ্যায় কি জো লোগ রিয়াকারি করতে হ্যায় আগর ও মেহনত করতে হ্যায় তো উনকি মেহনত এসি হ্যায় জেসে চটান কে উপর মিট্টি পড় গই তো বস ও বহ যায়েগি খতম হো যায়েগি উনকে কাবু মে কুছ নাই আয়েগা। আর জো আল্লাহ কি রজা জোই কে লিয়ে খরচ করতে হ্যায় উনকি মিসাল এসি হ্যায় কি মিট্টি কে উপর এক বাগ হ্যায় আর বাগ ভি জরা উঁচি জগা পে হ্যায় আর উসকে উপর বারিশ পড়ে তো উসমে ফসল উগেগি উসমে সব কুছ হোগা ক্যোঁকি উসমে মিট্টি মৌজুদ হ্যায়। তো আব ইয়ে বারিশ কা মতলব হ্যায় কি আল্লাহ তালা নে কবুল করনা হ্যায় কি নাই করনা আর মিট্টি কা মতলব ইয়ে হ্যায় কি আদমি নে জো আমল কিয়া হ্যায় ও কিস কিন বুনিয়াদো পর কিয়া হ্যায়, বুনিয়াদ জো হ্যায় ও পক্কি নিয়ত সচ্চি নিয়ত খুদা কি রজা জোই হ্যায় আর জো বাগ কা ফল হ্যায় ও ইনসান কো মিলনে ওয়ালা নতিজা হ্যায় আজর জো কল কিয়ামত ওয়ালা দিন মিলেগা। তো মতলব ইয়ে কি জো আদমি তকওয়ে কি সরজমিন পর নেক নিয়তি কে সাথ খুদা কি রজা জোই কে লিয়ে নেকি কা বীজ ডালেগা উসকো আল্লাহ তালা বারিশ সে বড়া চড়া দেঙ্গে আর ও দুগুনা তক নফা দে দেগা, ফসল বহুত আচ্ছি হোগি আর নতিজাতন আল্লাহ কে হ্যাঁ আজর ভি জাদা পায়েগা। আর আগর আল্লাহ তালা বহুত ফরাবানি সে ভি উসকো কবুল নাহি করেঙ্গে তো বস হালকি সি বারিশ ভি ইয়ানি আল্লাহ তালা কা আম কায়দে কে মুতাবিক কবুল কর লেনা ভি উনকো কাম দে যায়েগা, ও আমল জায়া নাই হোগা লাজমন কোই ফল দেগা। তো ইয়ে দো বাতেন আল্লাহ তালা নে কহ দি হ্যায় কি জো তো জো লোগ বদনিয়তি কে সাথ কর রহে থে তো উনকি মিসাল চটান পর বীজ ডালনে কি হ্যায়, ওয়াহ থোড়ি সি মিট্টি হ্যায় বারিশ হোগি বহ যায়েগি বীজ উগেগা হি নাই, জবকি ইয়াহাঁ সূরত হাল ইয়ে হ্যায় কি ও এক এসি জমিন পে বীজ বো রহা হ্যায় জো মিট্টি কি হ্যায় জিসমে বীজ বেঠ সকতা হ্যায় বারিশ রুক সকতি হ্যায় ওহাঁ ফসল উগ সকতি হ্যায়। তো জো আদমি রিয়াকারি করেগা ইনফাক কে বাদ লোগোঁ কো আজিয়ত দেগা উনকা খরচ করনা এসা হি হ্যায় জেসে চটান কে উপর বীজ বোনে কি কোশিশ করনা। আব ইয়াহাঁ পর দো নিয়তে আল্লাহ তালা নে বয়ান কি হ্যায়, এক ইবতিগা মারযাতিল্লাহ আর দূসরা ওয়া তাসবীতান মিন আনফুসিহিম, ইয়ে দোনো নিয়তে দুরুস্ত হ্যায় ইন দোনো সে अमल ज़ाया नहीं होते। पहली नियत तो हमारे यहाँ आमतौर से मशहूर है, लोग यही कहते हैं अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करें, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा जोई के लिए नेक करें, ये इब्तगा मरज़ात अल्लाह के अल्फाज में बयान किया गया है। व तस्बीतन मिन अनफुसहिम का मतलब यह है कि बाज़ुकात हमें नेकी पर कायम रहने के लिए नेकी करनी पड़ती है, अपने हौसलों को बुलंद करने के लिए नेकी करनी पड़ती है। जैसे सूरह मुज़म्मल में बताया गया है कि तुम तहज्जुद इस तरह से पढ़ो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, ताकि तुम्हारे अक्वामो कीला हो जाए, अशद वतन हो जाए, तो दिल भी मजबूत हो और कौल में भी सीधापन आए। तो तहज्जुद की ये जो दो मिसालें थी, ये भी इसी तरह की मिसाल है कि अगर मैं अपने अल्लाह की राह में ख़र्च करता हूँ तो इसलिए कि मेरे अंदर मज़ीद तकवा पैदा हो, तो ये भी दुरुस्त है, और मैं अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ख़र्च करूँ तो ये भी दुरुस्त है। दोनों इकट्ठी हों तो ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन बहरहाल जो अपने आप को नेकी पर कायम रखने के लिए कि मैं अल्लाह से राज़ी, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, और उस मकसद के लिए वो नेकी पर कायम रहने के लिए नेकी करता है, तो बिलाशुबा ये भी एक नेकी का काम है, और उस पर भी अल्लाह ताला अजर देंगे। तो ये अब पूरी बात हो गई कि जो नेकी करे, अल्लाह की राह में ख़र्च करे, फिर उसके बाद लोगों को जताए, एहसान जताए, या लोगों को अज़ियत दे, उनको तंग करे, उनसे काम ले ले, उनसे मुशक्क़त ले ले, तो उसकी नेकी ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह तीसरी वजह यह बताई थी कि उसकी नेकी भी ज़ाया हो जाएगी जो रियाकारी करता। तो तीन वजहें बता दी अल्लाह ताला ने कि नेकी, दूसरों के साथ जो नेकी की जाती है उसमें तीन वजूहात से नेकी ज़ाया हो जाती है। एक एहसान जताने से कि मैंने तुम्हें इतनी दफ़ा तुम्हारे साथ ये किया, फ़लाँ वक्त ये किया, फ़लाँ वक्त ये किया। दूसरा ये कि आपने अज़ियत दी, यानी उससे कोई काम ले लिया, उसको अज़ियत दी, उसको मशक्क़त में डाल दिया, किसी काम पर लगा दिया, या ज़हनी अज़ियत दी उसको, दोनों सूरतों में, तो वो भी नेकी आपकी ज़ाया चली जाएगी। तीसरा यह है कि आप रियाकारी करें, तीनों से नेकी ज़ाया चली जाएगी, और इन तीनों से बचना अल्लाह ताला की रज़ा जोई रह जाती है कि अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए करना चाहिए, और रियाकारी की नीयत से नहीं करना चाहिए काम, ना एहसान जताने के लिए, ना अज़ियत देने के लिए। और नेकी पर कायम रहने के लिए भी नेकी की जा सकती है कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी अपने लिए यह ख्याल करे कि मैं रोज़ाना दो नफल पढ़ा करूँगा ताकि मेरा ये काम आसान हो जाए, या ये मेरे लिए आदत बन जाए इबादत करने की। तो इस तरह बाज़ लोग रोज़ा रख लेते हैं कि मैं रोज़ा इसलिए रखूँ ताकि मेरे अंदर तकवा बहाल रहे, तो ये भी अल्लाह ताला ने नियत कबूल फरमाई है। और एक जो चीज़ मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ की थी, उसको दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये हमेशा याद रखिए कि ये दुनिया अल्लाह ताला चला रहा है, और अल्लाह ताला जब चला रहे हैं तो मेरी नेकी के जवाब में, मिसाल के तौर पर मैंने आपके साथ नेकी की और आपने उसके जवाब में गलत रवैया अख्तियार किया, तो ये नेकी तब्दील करने का या नेकी वापस लेने का या अज़ियत देने का या जिताने का मौका नहीं होता, बल्कि ये सब्र करने का मौका होता है ताकि मेरी नेकी ज़ाया ना चली जाए। तो जो होना है दुनिया में, जो नुकसान होने हैं, जो दूसरों ने धोखा देना है आपको और उसके नतीजे में जो नुकसान आपको हो जाना है या जो दुख होना है, उसकी वजह से अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहिए, अपने आप को नीचे नहीं उतारना चाहिए, हमें अपने मकाम पर रहना चाहिए कि हम खुदा की रज़ा जोई के लिए ये कर रहे थे, बस ठीक है, ये उसका ईमान है, ये हमारा ईमान है। तो दूसरा अगर कोई ख़राबी करता है तो आप उसको एहसान जता कर या उसको अज़ियत देकर कुछ हासिल नहीं होगा, आपकी नेकी ज़ाया चली जाएगी। तो बेहतर है कि जो आदमी आपकी नेकी के जवाब में बुराई करे तो ये आपके सवाब में ज़्यादा इजाफा कर देगा, ना कि वो आपके लिए कुछ सामान्य नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है, आपको और फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये काम नहीं करना कि मैं नीचे उतराऊँ और मैं नीचे उतर के आकर उसको गालियाँ देने लग जाऊँ या उसको एहसान जताने लग जाऊँ या उसको अज़ियत में मुब्तला कर दूँ, मुझे अपना ये काम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता ये याद रखिए ये भी जो ऊपर की बातों से वाज़े था कि मैं नेकी करूं, मसलन किसी की मदद करूं, किसी की शादी में, किसी के गमी में, किसी की खुशी में मदद करूं और उसके बदले में उससे काम ले लूं, तो खैरात ख़त्म हो गई। मैं नेकी करूं और उसको एहसान जता दूं तो खैरात आपकी ख़त्म हो गई, ये वाज़ रहना चाहिए। और मैंने नेकी की और लोगों को बताता फिरा था, लोगों को दिखाने के लिए कि लोग मुझे सखी समझें या ये करें, या दुनिया का कोई फ़ायदा वोट लेना है या लोगों को राज़ी करके इलेक्शन में खड़े होना है वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी रियाकारियाँ, इससे भी नेकी ज़ाया चली जाएगी। ये ख्याल ना करें कि जो आपने खिदमत खल का काम किया और उसके पीछे आपकी नीयत वोट लेना थी, इलेक्शन में जीतना था, या मोहल्ले में कोई सरदारी हासिल करनी थी, या इलाके में बड़ा आदमी बनना था, तो समझिए कि नेकियाँ ज़ाया चली जाती हैं। तो रियाकारी के ये सारे पहलू, तीन चीज़ें इकट्ठी कर दी अल्लाह ताला ने, रियाकारी और अज़ियत और एहसान जताना, ये तीन काम हमारी नेकियों को ज़ाया कर देते हैं जो हमने लोगों के साथ की होती हैं। आगे दो तमसीलों से अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि क्या मामला है, उसको एक और मिसाल से। ये दो मिसालें थीं, एक ये थी कि चट्टान के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी है, उसमें आपने नेकी का बीज बोया, बारिश आएगी तो बीज भी बह जाएगा और रेत भी बह जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो चट्टान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो मिट्टी को, बीज को कबूल करे और आपको। तो जो आदमी अज़ियत देता है, एहसान जताता है नेकी के बाद और रियाकारी करता है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे उसने पत्थर की चट्टान पर पौधा लगाने की कोशिश की। और दूसरा आदमी जो नेकी अल्लाह के लिए करता है और अपने आप को नेकी पर कायम रखने के लिए करता है, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि उसने मिट्टी के ऊंचे टीले में, जहाँ काफ़ी मोटी मिट्टी थी, उसके ऊपर बीज बोया और अपनी नेकी उसमें की। अब जब बारिश आएगी तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें दुगना तिगना इजाफा भी हो जाएगा, और अगर बारिश ना भी हुई ज़्यादा, अल्लाह ने हल्का सा भी कबूल कर लिया, तो तब भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये दो मिसालें दी थी। अब एक और तमसील से इस बात को समझाया कि अपनी नेकी ज़ाया करने का मतलब क्या है। फरमाया, यवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुन मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहती अलनहार। क्या तुम में से कोई ये चाहेगा कि उसका एक बाग हो खजूरों का और अंगूरों का, और उसके नीचे नहर भी जारी हो, लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, और उसमें हर तरह का फल उसको मैसर हो, व असाबहुल किबर, और इस आदमी को जिसका बाग हो वो बूढ़ा भी हो गया हो, वलहु ज़ुर्रियतुन ज़ुहफ़ा, और उसकी औलाद अभी कमज़ोर हो, बाग को संभाल ना सकती हो या अपने आप को संभाल ना सकती हो, फ़आसाबहा एसारुन फ़ीह नार, तो इस बाग के ऊपर एक बगूला चले जिसमें आग हो, फ़ह तरकत, तो वो उसको जला के रख दे। क्या कोई ये चाहेगा कि उसका बाग हो, बच्चे छोटे हों, कमज़ोर हों, और उसका बाग इस तरह से जल के राख हो जाए। तो जो आदमी एहसान जताएगा, जो आदमी दूसरों को अज़ियत देगा या रियाकारी करेगा, उसकी मिसाल इस शख्स कैसी है कि उसने सारी ज़िंदगी नेकियां की, रियाकारी से आग बगुले के हवाले कर दिया, और उसका बाग, अच्छा खासा बाग, तबाह बर्बाद होकर रह गया। हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं, ना अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ के जा सका, ना अपने बुढ़ापे में कोई रह गया उसके पास। तो ये कैफियत होगी क़यामत वाले दिन उन लोगों की जिन्होंने अपनी नेकी को ज़ाया कर दिया होगा, एहसान जताकर, दूसरों को अज़ियत देकर, उनसे काम लेकर, या रियाकारी करके। तो ये काम नहीं करना चाहिए, अपने आमाल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो बाग की तमसील है, उसको थोड़ा सा कुरान की बात को मज़ीद गहरा समझने के लिए असूली मुराद मुद्दा मैंने बयान कर दिया। अरबों के यहाँ खूबसूरत तरीन बाग की, बाग से मतलब गार्डन नहीं है बल्कि फलों का बाग जिसको हम कहते हैं वो है, गार्डन जो पार्क्स वगैरह होते हैं वो मुराद नहीं है। तो फलों का जो बाग होता है, ऑर्चर्ड, उसकी बात हो रही है कि इनका तरीका ये था कि बाग के चारों किनारों पर खजूरें लगी होती थी, और उन खजूरों के बीच में अंगूर की बेलें होती थी, और फिर छोटे छोटे कते छोड़े होते थे जिसमें मौसमी फसलें लगा लेते थे, यानी कोई सब्ज़ी लगानी या कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो बीच में लगा लेते थे, या छोटे फल जो होते हैं अंगूर और उसके अलावा खजूर के अलावा, तो ये वो काम करते थे। इस काम में जो बाग होता था, फिर उसके अंदर अगर आपको ये सहूलत हासिल हो गई, कहीं से चश्मा जारी है और उस चश्मे का पानी आपके खेतों के दरमियान में नाले बना रखे हैं, तो ये इनके यहाँ खूबसूरत बाग की निशानी थी। तो उसका ही नक्शा यहाँ खींचा गया है कि एक आदमी का बाग हो जिसमें खजूरें हों, अंगूर हों और बीच में नहरें जारी हों और वो हर तरह का फल देता हो, यानी हर मौसम में कोई ना कोई सब्जी उसके अंदर, कोई फल उसके अंदर लगता रहता हो, ऐसा बाग हो। तो अब अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हारी खैरात सदका इस तरह का बाग था, तुम्हारी लोगों की खिदमत करना इस तरह का बाग था, तुम उसको बगुले के हवाले कर रहे हो कि उड़ा के रख दे और बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी नेकियों को ख़राब नहीं करना। नेकी तो तुमने कर ही ली, तो आखिरत के लिए कर दो। इसमें एक और बात है कि असाबा है एसारुन फी हिनार, ऐसे बगुले जिसमें आग हो। पुराने हमारे जो मशरक़ी इलाके हैं इसमें इस तरह के बगुले नहीं देखे गए जिसमें आग हो, लेकिन अब मालूम है हमें कि इस तरह के बगुले होते हैं। लेकिन अगर ना भी होता तो ये तमसील के अंदाज़ में बात हुई थी। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि बगुले वाले, आग वाले बगुले होते हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई बगुला हो और उसमें आग हो तो वो जला देगा। कज़ाली का युबैनुल्लाहु लकुम लकुम लायात लअल्लकुम ततफक्करू, इस तरह से अल्लाह ताला अपनी बातें वाज़े करते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो। ये जो जुमला है अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ताला अपनी बातों को जब तमसील से या सवाल के जवाब की सूरत में बयान करते हैं तो उस मौके पर ये बोलते हैं। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि वो अपनी बातों को मिसालों से समझाते हैं। बहुत सारे अमूर ऐसे होते हैं जो समझाए नहीं समझाए जा सकते जब तक कि उसकी मिसाल ना दें। मिसाल दे दें तो आपको बात फौरन समझ आ जाती है। कल परसों ही किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि अगर आदमी ये मुतालबा करे कि खुदा को देखना है तो इसमें बुराई क्या है। तो मैंने कहा ये कोई बुराई की बात नहीं है, फितरी बात है कि इंसान चाहता है कि खुदा को देखे और खुदा को माने, खुदा को मिला मुलाकात करे, उसको वाज़े हो जाए कि अल्लाह ताला है या नहीं, ये फितरी सी जज्बा है इंसान के अंदर। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई इसमें है कि आदमी कहे कि मैं देखे बगैर नहीं मानूंगा। बुराई इसमें है, मैं देखे बगैर नहीं मानूंगा। ये क्यों बुराई है? ये इसलिए बुराई है कि ज़ाबता दुनिया का ये बनाया गया है कि खुदा को बिलगैब मानना है, देखे बगैर मानना है। खुदा को देखे बगैर मानना है और आदमी कहे कि जनाब मैंने देखना, तो अब उसने सरकशी कर ली है, खुदा की नाफरमानी कर दी है कि नहीं, अल्लाह ने कह रखा है कि बिन देखे मानना है और आप तकाजा कर रहे हैं कि मैं देखे बगैर नहीं मानूंगा। अब आप जाब्ते को तोड़ रहे हैं। तो मैंने फिर उसकी मिसाल दी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ट्रैफिक चलाएं, गाड़ी चला रहे हों और चौक में कहीं अखलाकी असूलों में नहीं लिखा हुआ कि सुरख बत्ती पर रोका जाता है और सब्ज़ बत्ती पर चला जाता है, और ये भी नहीं लिखा हुआ कि सुरख बत्ती पर रुकने से सवाब होता है और गाड़ी चलाने से गुनाह होता है, और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि सब्ज बत्ती पर गाड़ी चला देने से सवाब होता है और रुकने पर गुनाह होता है, ये भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर कोई आदमी अब तोड़ेगा इस इशारे को तो वो तब भी उसको जुर्माना होगा, खास सड़क खाली ही क्यों ना हो, क्योंकि उसने जाब्ते को तोड़ा है। तो जाब्ते को तोड़ने का भी गुनाह होता है। तो इसलिए दुनिया का ज़ाब्ता अल्लाह ने यह बनाया है कि युमिनूना बिलगैब, वो खुदा को बिन देखे ही मान लाते हैं। तो इस ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी हो जाती है। हाँ, मुतालबा अम्बिया ने भी किया है, अल्लाह ताला ने कुछ नहीं कहा। पूछा कि इत्मीनान है, ईमान है, तो उन्होंने कहा जी हाँ है, ईमान है, बस इत्मीनान करना चाहते हैं। तो उनको ही दिखाया गया जो भी उन्होंने देखना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला का देखने का मुतालबा किसी का भी पूरा नहीं हुआ। हज़रत मूसा को बार बार यही कहा गया कि तुम नहीं देख सकोगे, उन्होंने जब इसरार किया तो उन्होंने कहा चलो पहाड़ को देखो, अगर उस पर जो मैं अपना जलवा डालूंगा उसको बर्दाश्त कर लेते हो तो मुझे भी देख लोगे, वो बेहोश होकर गिर गए। तो इस तरह से एक तो यह है कि हमें ताकत नहीं दी गई, दूसरा यह है कि हमें, तो अब मैंने तमसील से बात समझाई कि कानून को तोड़ना ये एक जुर्म होता है, तो उनको आसानी से समझ में आ गई। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जहाँ पे तीन मिसालें इन्फाक को समझाने के लिए दे दी हैं कि तुम्हारा आमाल किस तरह से जाया जाएंगे, तो चट्टान, इस तरह की पुख्ता चट्टान के ऊपर बीज बोना हमाकत होगी, बेवकूफ़ी होगी। तो वो आदमी जो बुरी नीयत के साथ, रियाकारी की नीयत के साथ एहसान जताने पर और अजियत देने पर समझे कि मेरा बीज नेकी का फल दे देगा तो वो हमाकत करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि उस ज़मीन में बीज बोना चाहिए नेकी का, जो बीज को भी कबूल कर सके और बारिश के पानी को भी रोक सके, और वो मिट्टी होती है, तो इसलिए वहाँ जो है वो रबवा की मिसाल दी गई है। बाद लोग रबवा में इस मानी में चले गए कि रबवा ऊंची जगह पे होता है तो अच्छी ज़मीन, ऊंचा बाग बेहतर होता है, सैलाब से बचा रहता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रबवा यहाँ सफवान के उलट आया है, सफवान के ऊपर मिट्टी की, यानी पत्थर के ऊपर मिट्टी की एक छोटी सी लेयर होगी, बस बारिश होगी साफ़ हो जाएगा। रबवा का मतलब है कि अच्छी मिट्टी है, उसके नीचे कोई 10-15 फुट का मिट्टी का ढेर है जिसके ऊपर फसल उगती है तो बेहतर उगती है। आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फीह वालमू अन्नल्लाह गनी उन हमीद। ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में वो खर्च किया करो जो तुमने कमाया है उसमें तय्यब अच्छी चीज़ें, और उसमें से भी अच्छी चीज़ें खर्च किया करो जो हमने तुम्हें ज़मीन से पैदा करके दी हैं। तो इंसान के पास जो रिज्क आता है वो दो तरह से आता है, एक ज़रई रिज्क है और एक कारोबार से, दोनों को यहाँ इकट्ठा कर दिया है, यानी तजारत से, इंडस्ट्री से। तो अनफिकू मिन तय्यिबाती मा कसबतुम में ये चीज़ें मुराद हैं, इंडस्ट्री से कमाया हुआ, तजारत से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ। और वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, ये वो है जो ज़मीन से पैदावार, ये भी मेहनत से होता है, लेकिन भारत ये वो है जो ज़मीन से, यानी ज़रई पैदावार। तो ज़रई अजनास और दूसरे जो भी कमाने के ज़रिए हैं, फरमाया कि इन दोनों में से तुम वो चीज़ें खर्च करोगे जो तय्यबात। तय्यब का मतलब हमारे यहाँ आमतौर से पाकीज़ा तर्जमा कर दिया जाता है, तय्यब का मतलब है कि जो खुशगवार हों, देखने में भली लगें, साफ़ सुथरी हों, पाकीज़ा भी हों, इसमें कोई शुबा नहीं है, गली सड़ी ना हो, ख़राब ना हो, नाकारा ना हो, ये मतलब है तय्यब का। कुरान में इस्तेमाल हुआ है कि उन औरतों से शादी करो मा ताबा लकुम, जो तुम्हें साजगार लगें, बेहतर लगें, पसंद आ जाएँ। तो अच्छी चीज़ का मतलब यहाँ पर पाकीज़ा नहीं है, अच्छी चीज़ें खर्च किया करो, अच्छी हालत में हो, मियारी हो, घटिया चीज़ ना हो। तो इसलिए इसका उलट यहाँ खबीस आया है, खबीस का मतलब नापाक भी है लेकिन घटिया भी है। तो फरमाया कि तुम अपनी कमाई, दोनों तरह की कमाइयों में से, यानी अगर अजनास को खर्च करना है, गंदम आटे चावल वगैरह को, तो वो भी अच्छे, और अगर तजारती चीज़ों में से करना है, कोई आपने कपड़े बना रखे हैं, कोई लेदर की चीज़ें बना रखी हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी तुमने अच्छी अल्लाह की राह में खर्च करनी है, घटिया चीज़ नहीं खर्च करनी। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु, और अपने माल में से, इन दोनों कमाइयों में से, वो चीज़ खर्च करने के लिए ना लिया करो जो खबीस हो, घटिया हो, यानी गली सड़ी, बदबूदार, ख़राब हुई हुई, या बुसीदा हो गई हुई, या आपको भी पसंद नहीं है कि उसको पहना जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अपने माल में से घटिया चीज़ हरगिज़ ना लो खर्च करने के लिए। मैं तयम्मम का तर्जमा लेना कर रहा हूँ, यही इसका सही तर्जमा है। तयम्मम का मतलब होता है इरादा करना, कसद करना, और कोई चीज़ लेना, ठीक है, तो दोनों मतलब होते हैं। तो ये दूसरा मतलब जो है वो यहाँ बिल्कुल सूट करता है कि अपने माल में से घटिया चीज़ें ना लिया करो अल्लाह की राह में देने के लिए। तुनफिकून, तो अपने माल में से घटिया चीज़ें ना लो कि तुम उनको खर्च करो अल्लाह की राह में। बलस्तुम बेआखिज़ीह इल्ला अन तुग़मिज़ू, और ऐसी चीज़ें कि तुम खुद उसको लेने को तैयार ना हो, इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, सिवाय इसके कि तुम, अब तुग़मिज़ू फ़ीह जब आ जाता है तो दो मतलब होते हैं, एक ये होता है कि किसी चीज़ की कीमत कम कर देना उसके घटिया होने की वजह से। मसलन आपने मुझे कहा जी ये जूता ख़रीद लें, तो मैंने कहा यार ये तो चमड़े का नहीं बना हुआ, ये तो नाकस मटेरियल का बना हुआ, तो मैं इतने का नहीं लूँगा, कम पैसे दूँगा। तो ये भी तुग़मिज़ू फ़ीह का मतलब होता है। और दूसरा ये होता है कि आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही और आप लेना नहीं चाह रहे, हिचकिचाहट का शिकार है, पसंद नहीं आ रहा आपको, ख़रीदें, तो ये भी मतलब होता है तुग़मिज़ू का। तो यहाँ दूसरा मतलब ज़्यादा सूट करता है कि तुम खुद उसको तरद्दुद के बगैर लेने को तैयार नहीं हो, तुम खुद उसको खरीदने को सुस्ती इख्तियार करोगे, तसाउल करोगे, टलनी जाए ना लेना पड़े ये करोगे। तो ये सूरत, इस तरह की कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च ना करनी पड़े। इन्हें असूल ये बता दिया कि तुम्हें अगर कोई वही चीज़ दे तो क्या कबूल कर लोगे, इसके ले लोगे खुले दिल के साथ? अगर खुले दिल के साथ तुम खुद उसको लेने को गवारा नहीं कर रहे हो तो किसी को भी ना दो। ठीक है, अब इसमें एक जगह पर मैं ये दरस दे रहा था इस आयत का, तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि आम तौर से हम अपने पुराने कपड़े अल्लाह की राह में दे देते हैं जो हम खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो मैंने कहा अगर वो पहनने के काबिल हैं और अब आपकी पसंद नहीं रही या आप इस वजह से छोड़ना चाहते हैं कि बहुत दफ़ा पहन लिए हैं लेकिन कपड़ों की हालत अच्छी है, तो वो दिए जा सकते हैं, लेकिन उस पर नई चीज़ का वाला इनाम आपको नहीं मिलेगा। नई चीज़ को अल्लाह की राह में देना और मतलब है, और इस तरह की इस्तेमाल शुदा चीज़ को देना ये ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो इतनी घटिया हो जाए कि अब देखने वाला उसको पसंद ना करे। तो पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें उन लोगों को दी जा सकती हैं जिनको उनके ज़रूरत हो, उसमें इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। लेकिन घटिया, गली सड़ी, फटी हुई चीज़ें, उन कपड़ों में ऐसी बदबू आ रही हो, उसमें जगह जगह दाग लगे हुए हों, ऐसी चीज़ें फिर अल्लाह की राह में देनी चाहिए। वो वैसे ही पकड़ा दें, उनको काम होगी, उनको तो कर लेंगे। वालमु अन्नल्लाह गनी उन हमीद, और ये जान लो कि अल्लाह ताला गनी और हमीद है। अब ये मतलब है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो तो अल्लाह की ज़ात के लिए तुमने खर्च करना है, अल्लाह की मर्ज़ात को हासिल करने के लिए, तो तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए घटिया चीज़ें मिली। अल्लाह के शायन शान चीज़ें खर्च होनी चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ें कि जो तुम खुद लेने में पसंद ना करो। दो सिफात हैं यहाँ पर, गनी और हमीद। गनी का मतलब है कि अल्लाह ताला खुद इतना साहिब दौलत है कि उसको किसी की दौलत से कोई ज़रूरत नहीं कि उसको कोई दे। तो ये तुमने मुझे नहीं देना है, अपने लोगों को ही देना है, ये किसके अंदर ये पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि वो मोहताज नहीं है। मोहताज को तो ये मसला होता है कि जो भी चीज़ मिल जाए ठीक है, लेकिन खुदा के हजूर तुमने कोई चीज़ पेश करनी है तो उसके शायान शान होनी चाहिए। वो मोहताज नहीं है, उसने जो इन्फाक का तरीका निकाला है तो वो तुम लोगों के एक दूसरे की मदद के लिए निकाला है, कल तुम्हें भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी पैसे की। तो अल्लाह ताला गनी है, उनको इन चीज़ों की मोहताजी नहीं है। और हमीद, अल्लाह ताला जो है वो शुक्र के लायक है। तो इसलिए, और हमीद के मानी ये भी होते हैं कि ऐसे काम करने वाली ज़ात कि जिनको देख कर तारीफ़ करने का दिल चाहे, या काबिल तारीफ़ काम करने वाली ज़ात, या काबिल शुक्र काम करने वाली ज़ात, ये भी हमीद के मानी है। तो ऐसी ज़ात जो तुम्हारे कामों को कबूल करने वाली है, तुम्हारे ऊपर इनामात करने वाली है, उस ज़ात की खातिर तुम्हें खर्च करना है तो तुम्हें अच्छा माल खर्च करना चाहिए। अब ये जो दो आयतें थी, बल्कि एक ही आयत है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि खर्च करने के आदाब क्या हैं। यानी ये बताया कि कौन सी चीज़ खर्च करनी चाहिए अल्लाह की राह में और कौन सी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करनी चाहिए, ये इस आयत में ये बताया गया है। तो गोया अल्लाह ताला ने इन्फाक के बारे में पूरी तफसील यहाँ कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अल्लाह की राह में खर्च करने वाली नेकी को बर्बाद कर देती हैं, फिर बताया कि कौन सी नीयतें ख़राब कर देती हैं, फिर ये बताया कि कौन सी नीयतें, दोनों दो नीयतें जो बताई गई हैं वो इस काम के लिए ठीक हैं, उसके नेकी ज़ाया नहीं जाती। अब ये बताया इस आयत में कि किस तरह का माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और किस ज़ात के हजूर में, किस ज़ात को राज़ी करने के लिए तुम खर्च कर रहे हो, उसको भी अपने सामने रखो। अगली आयत जो है उसमें अल्लाह ताला उन रुकावटों को बता रहे हैं जो खर्च करने की राह में हायल होती हैं, वो रुकावटें बता रहे हैं। अश्शैतानु यायदुकुम अल-फ़क्र व यामुरुकुम बिल-फ़हशाइ वल्लाहु यायदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान जो है वो तुम्हें डराता है गुर्बत से और तुम्हें हुक्म देता है फ़हशा का, और अल्लाह ताला जो हैं वो तुम्हें हुक्म देते हैं, वादा करते हैं तुमसे मग़फ़िरत का, ख़ास अपनी तरफ से और अपने फ़ज़ल का। अब ये दो रुकावटें हैं जो शैतान इन्फाक के लिए हमारे दिल में पैदा करता है। एक फ़क्र है, गुर्बत, कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, तुम गरीब हो जाओगे। और वयामुरुकुम बिलफाहशा, और वो तुम्हें फाहशा का हुक्म देता है। ये दूसरी रुकावट है अल्लाह की राह में खर्च करने की। पहली रुकावट तो वाज़ेह है कि मैं खर्च करूंगा तो पैसे कम हो जाएंगे मेरे पास, तो कहीं मैं मोहताज ना हो जाऊं कि कल मुझे ज़रूरत पड़े, आज मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, कल मुझे ज़रूरत पड़ गई कहाँ से आएंगे फिर, तो ये मोहताजी ना कहीं हो जाए। तो शैतान हमारे दिल में ये ख्याल डालता है कि पैसे थोड़े रह जाएंगे, ये दे दोगे तो कम हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। एक ये बात, ये तो वाज़े है कि शैतान ये रुकावट डालता है। लेकिन दूसरी जो है वो यामुरुकुम बिलफाहशा जो है, वो इन्फाक में कैसे रुकावट बनती है, तो अल्लाह ताला ने ये बताया है कि वो इस तरह से रुकावट बनती है कि दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और एक मुबज़िरीन हैं जो बेहयाई और औरयानी और गलत कामों में पैसा लगाते हैं। तो जिस आदमी को ये लत पड़ जाए कि उसने अपने पैसे से अलल्ले तलल्ले करने हैं, तो वो भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकता। तो शैतान अब फिर क्या करता है, दो काम करता है, कुछ लोगों को फ़क्र का डरावा देता है और कुछ लोगों को अलल्ले तलल्लों में लगा देता है कि अब अल्लाह की राह में आखिरत के लिए खर्च ना करो, ये याशी कर लो, ये फ़ायदा उठा लो, ये, तो वो अलल्ले तलल्ले और फ़क्र दोनों को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से तुम माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हो बल्कि रोक लेते हो उसको, एक इस डर से कि पैसा कम हो जाएगा कल मुझे ज़रूरत पड़ गई तो, और दूसरा इस वजह से कि मैं फिर ये कैसे करूँगा और वो कैसे करूँगा और वो कैसे करूँगा। यहाँ अल्लाह ताला ने हराम चीज़ का जिक्र कर दिया है और कुछ चीज़ें इसके ज़ैल में आ जाती हैं, और हराम चीज़ में यानी फाशी के कामों में इस्तेमाल करना, और इससे आप तबजीर में जितने भी चीज़ें हैं कि आप फजूलियात में, फजूल कामों में आप पैसा खर्च करें, तो वो इसके तहत आ जाएगा। अगरचे वो हुरमत के दायरे में नहीं होता, लेकिन बहरहाल खैरात करने में और अल्लाह की राह में देने में अगर वो रुकावट बन रहा है तो वो फिर काम ख़राब हो जाता है। इसके मुकाबले में अब अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यायदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़लन, अल्लाह ताला भी तुमसे दो चीज़ों का वादा करता है, शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से और हुक्म देता है फाहशा का, और अल्लाह ताला तुम्हें दो चीज़ों का वादा करते हैं, अपनी तरफ से मग़फ़रत का और फ़ज़ल का। तो फ़क्र का उलट फ़ज़ल तो सामने है कि तुम्हें वो फ़क्र से डराता है तो अल्लाह ताला खुला तुम्हें माल देगा, अपना फ़ज़ल कर देगा, लेकिन फ़हशा के मुकाबले में मग़फ़रत मिन हुआ आया कि अगर तुम तबज़ीर से बचोगे तो खुदा से मग़फ़रत हासिल करोगे, तुम्हें बहुत खुदा की तरफ से मग़फ़रतन मिन्हू में मिन्हू ख़ास तौर से लगाया कि अल्लाह ताला की ख़ास मग़फ़रत तुम्हें हासिल होगी। हालांकि ये भी होता है याद को मग़फ़रतन व फ़ज़लन मिन्हू, ये भी हो सकता था, लेकिन बीच में तोड़ के मिन्हू डाला गया है। तो इसका मतलब है कि जो आदमी तबज़ीर से बचेगा और अल्लाह की राह में खर्च करेगा उसको दो चीज़ें हासिल होंगी, ये खुदा की तरफ से मग़फ़रत गुफरान, और दूसरे अल्लाह की तरफ से खुला फ़ज़ल, बेपनाह रिस्क मिल जाएगा और मग़फ़रत भी मिल जाएगी। खुदा की तरफ से मग़फ़रत का मतलब क्या है कि बस सारे दरवाज़े खुल गए, जन्नत का कोई दरवाज़ा बंद नहीं है आपके ऊपर, एक ऐसा परमिट मिल गया कि बस आप अल्लाह की उस दुनिया में चले जाएंगे जो दायमी दुनिया है, जिसमें कोई जवाल नहीं है, कोई उसमें कमी नहीं है, आपकी तमन्ना की हर चीज़ मिलेगी। और यहाँ आप फाहशा की वजह से एक छोटी सी तमन्ना की खातिर वो अबदी जो लुत्फ़ है और लज्जतें हैं और जो नेमतें हैं उनसे महरूम होने की कोशिश कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने दोनों को मुआज़ने में रख कर, तो पहली दोनों चीज़ें माने हैं, रुकावट हैं खर्च करने की रास्ते में, और मग़फ़रत और फ़ज़ल दोनों उभारने की चीज़ें हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने पे अल्लाह ताला उभार रहे हैं। तो लोगों को मग़फ़रत मिलेगी और फ़ज़ल मिलेगा अगर अल्लाह की राह में वो खर्च करेंगे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत गुंजाइश वाला है और बहुत इल्म वाला है। ऊपर गनी और हमीद कहा था, यहाँ वासिउर अलीम कहा है। मैं शायद पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात को मुख्तलिफ सियाक व सबाक में लाते हैं ताकि हम उस सियाक व सबाक में उन सिफ़ात के मानी समझ सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें भी मालूम हैं, चूँकि वो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ वो सिफ़ात पाई जाती हैं, तो बुनियादी तसव्वुर तो हम सिफ़ात का इस तरह से समझते हैं, लेकिन उसके मुख्तलिफ शेड जो हैं वो सियाक व सबाक बदलने से समझ में आते हैं, वो सीधे समय नहीं आ सकते। यानी उसके लिए फिर मज़मून लिखना पड़ेगा कि मसलन हमीद के मानी क्या क्या है, या ये मज़मून लिखना पड़ेगा कि वासे और अलीम के मानी क्या है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि वासे और अलीम के मानी बताने के लिए एक पूरी सूरह उतारें, बल्कि ये किया है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सिफ़ात लेकर आए हैं ताकि सियाक व सबाक के अंदर वो बात वाज होती चली जाए। तो अब मगफ़रत और फ़ज़ल को सामने रखिए और वासे उन अलीम को ध्यान कीजिए कि अल्लाह ताला मगफ़रत देने में और फ़ज़ल करने में बहुत वसी हैं। शैतान के पास क्या है? कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला बहुत वसी हैं, पैसा ही पैसा है, दौलत ही दौलत है, नेमते ही नेमते हैं। अल्लाह ने तो बस एक हुक्म देना है और नेमत तैयार हो जानी है। और बाकी लोग जो फ़क्र से डरा रहे हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं मगफरत का और फ़ज़ल का, जो कि वासे हैं, जिनके पास बेपनाह है, उसके नेमतों के समंदर ख़त्म ही नहीं होते। और अलीम है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला जो तुम्हें बात कह रहे हैं वो अपने इल्म की बुनियाद पे कह रहे हैं, वो वहम नहीं है, बेख्याली नहीं है, वो कोई सब्ज़ बाग दिखाने का एक बहाना नहीं है, वो सच्ची बात है जो अल्लाह ताला वादा कर रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें बता रहे हैं कि मैं, अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मगफरत और फ़ज़ल का वादा है, ये इल्म की बुनियाद पर है, पक्का सच्चा वादा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। और दूसरा पहलू इसमें यह है कि तुम अगर फाहशात छोड़कर अल्लाह की राह में खर्च करोगे और फ़क्र के ख़तरे के बावजूद अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम्हारी नेकी ज़ाया नहीं जाएगी, खुदा के इल्म में, वो अलीम है, तुम्हारी सारी नेकियों को जानता है, वो तुम्हारे दिल के ख्यालात तक को जानता है, तो इसलिए कोई चीज़ तुम्हारी ज़ाया नहीं जाएगी। ज़र्रा बराबर नेकी करोगे तो वो भी सामने आ जाएगी। तो इसलिए ये वादा उस हस्ती का है जो वासे भी है और अलीम भी है, तुम्हारी एक एक तंगी को जो खर्च करने के बाद तुम्हें हासिल होगी, और तुम्हारी एक एक लज्जत जो कुर्बान तुम करोगे, और एक एक जो नेमतों की जो फरावानी है उसका जो लुत्फ़ है उसको कुर्बान करोगे तो अल्लाह ताला उसको भी जानता है, उसके लिहाज से पूरा पूरा बदला देगा बल्कि ज़्यादा देगा। तो अब ये जो बात है ये हर किसी को समझ नहीं आ सकती कि आदमी दुनिया की लज्जतें छोड़कर, फ़क्र का ख़तरा छोड़कर अल्लाह की राह में खर्च कर दे। तो फरमाया कि यूतिल हिकमत मन यशा, ये वाली हिकमत अल्लाह ताला उसको देते हैं जो इस काबिल होता है, ठीक है, हर एक को नहीं देते। वमई यूतल हिकमत, और जिसको ये हिकमत मिल जाती है, फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा, तो समझो को उसको खैर कसीर मिल गया। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, लेकिन मेरी इन आयतों से वही नसीहत पकड़ते हैं, उन्हीं को ये हिकमत मिलती है जो अकल वाले होते हैं। तो अब ये देखिए कलाम इन्फाक के हवाले से कहाँ पहुँचा दिया है। हिकमत कुरान मजीद के नज़दीक वो दानाई है जो मुझे आखरत अंदेश बनाती है, जो मुझे हकीकत पसंद बनाती है, हिकमत वो दानाई है। मौलाना फराही कहा करते थे कि हिकमत दरअसल उस दानाई को कहते हैं जो अमल की सूरत इख्तियार करें, हिकमत उस दानाई को कहते हैं जो अमल की सूरत इख्तियार करें। वो दानाई दानाई नहीं है जो महज अकल की मोशगाफियाँ हों। तो कुरान मजीद की हिकमत दरअसल वो रवैये का, उस रवैये का नाम है, उस तर्ज़ अमल का नाम है, उन आमाल का नाम है जिनके पीछे ये दानाई कार फरमा हो कि कल क़यामत होनी है, खुदा के यहाँ जाना है, और मेरा वास्ता एक वासे और अलीम और गनी और हमीद खुदा के साथ है। ये दानाई है जो, लेकिन चूंकि इंसान दानाई पसंद बनाया गया है तो वो अपने फलसफे तराश लेता है, और जिसके नतीजे में समझता है कि मैं दाना हो गया हूँ, हालांकि वो बेवकूफ़ियों को दाना ही समझ रहा होता है। बहुत सारे दानश्वर इसी तरह के होते हैं कि वो अपनी अकली मुशगाफियों को दाना ही समझ रहे होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो कल क़यामत वाले दिन खाली हाथ होंगे। और जिसके पास ये दानाई हो कि इस कायनात की हकीकत को समझे और उसके मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजारे, ये दानाई जो है ये खुदा की तरफ से ख़ास अनायत होती है और उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को इस काबिल साबित कर देते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस हिकमत से नवाज दें। तो गोया अबू जहल और अबू बकर में फ़र्क क्या है? इस दानाई का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। वो इस चक्कर में पड़ गया कि मेरी बादशाहत है, मेरी सरदारी है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुक जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? और अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि अच्छा, हमेशगी का फ़ायदा होने वाला है, मेरा खुदा को राज़ी करना है मैंने, जिसके पास सब कुछ है, चलो। तो ये वो दानाई है जो अल्लाह ताला बांटते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये दानाई अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। तो दानाई दरअसल ये है कि हम हकीकत पसंद हों और जो इस दुनिया की हकीकत है उसको खुदा की रहनुमाई में कबूल कर लें और फिर उस रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। और ये दानाई कदम कदम पे आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब आपको एक तरफ आपकी कोई तमन्ना हो और दूसरी तरफ किसी गरीब का हाथ हो, तो फैसला करना पड़ता है कि अब क्या करना है। उस वक्त भी यही दानाई काम आती है। और अल्लाह ताला से पूछा गया कुरान मजीद में कि क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है उसमें से मैं मांगता हूँ। तो अपनी ज़रूरतों का रख के आप खर्च कर सकते हैं, उसमें फिर आपको ये दानाई इस्तेमाल करनी है। ज़रूरत का आप रखिए, ज़रूरत का अल्लाह ताला ने मुतालबा नहीं किया, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ है उसमें से अल्लाह ताला मुतालबा करते हैं, उसमें ये दानाई इस्तेमाल करनी है कि अब मैंने अपनी तमन्ना को सामने रखना है, जिसको यहाँ फाशा के लफ्ज़ से बयान किया गया है, या उस उठे हुए गरीब के हाथ का ध्यान रखना है। तो ये वो मुवाजना है जो ये एक हकीम इंसान को कदम कदम पे ये फैसला करना पड़ता है। इसको अल्लाह ताला ने हुक्म भी करार दिया है कि जिसके पास ये हिकमत होती है उसके पास कुव्वत फैसला भी होती है। तो वक्त हो गया जी, वा आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।